बढ़ के कोई बात कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, तो डू नॉट लिसन टू इट। इलाहाबाद इकबाल ने एक पोएम लिखी, मैं इसी वजह से आप आज दुनिया की सूरत हाल देख लें कि जिससे काम करवाना होता है ना या जिसको अपने शीशे में उतारना होता है उसको इसको डिप्लोमेटिक टर्म्स भी कह सकते हैं, इसको आप आई डोंट नो, आप मुझे बताइएगा आप इसको क्या नाम देंगे। तो इलामा इकबाल ने, डॉक्टर इलामा इकबाल ने बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए भी लिखी हैं। 5220 मेरा ख्याल है कि अब मेरी गलती पकड़े तो मुझे बता जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक साहब ने तो मेरा ख्याल है यूट्यूब पे भी कर दिया कि यू हैव अ प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट फॉर फ्यू वर्ड्स। यस ऑफकोर्स, वो ये बच्चों के लिए डॉक्टर साहब ने लिखा है। वो कहते हैं एक दिन इसको सुनने वाला है कि शुरू का हिस्सा इसका क्या है, कि आपको पता है मकड़ा क्या है, मकड़ा एक जाल बुनता है, बड़ा खूबसूरत जाल होता है, बहुत जबरदस्त जाल होता है, और मक्खी या कोई भी चीज जब उस जाल के बीच में फंसती है तो वो उसमें से निकल नहीं पाती। मकड़े को पूरा का पूरे जाल का जो मैप है उसके पास होता है कि मैंने उस नुक्कर के बीच में पहुंचना है तो मैंने किस रास्ते को अडॉप्ट करते हुए वहां तक पहुंचना है, ठीक। और फिर वो मक्खी या जो भी चूंटी उसके बीच में फंसती है तो वो बेचारी तो कभी भी नहीं निकल सकती, बस उसके बाद फिर मकड़ा दिन ब दिन मोटा 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 होता चला जाता है। तो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अलामा इकबाल ने बच्चों के लिए भी बहुत सारी पोम्स लिखी थी, तो ये है बच्चों के लिए। वो लिखते हैं कि एक दिन किसी मक्खी से कहने लगा, मकड़ा इस राह से होता है गुजर रोज तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहां पांव न रखा। अब ये मकड़ा मक्खी बाहर है, अभी उड़ रही है, भी 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 कर रही है। तो वो कहता है एक दिन किसी मक्खी से कहने लगा, मकड़ा इस राह से होता है गुजर रोज तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहां पांव न रखा। गैरों से न मिलिए तो कोई बात नहीं, अपनों से मगर चाहिए यूं खिंचके न रहना। आओ मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हजरत हजरत किसी नादान को दीजिए ये धोखा, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर उतरा नहीं। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुमसा कोई नादान जमाने में न होगा। उसने जवाब दिया, वाह फरेबी मुझे समझे, तुमसा कोई नादान जमाने में न होगा, मंजूर तुम्हारी मुझे खातर थी वगरना, कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं है। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहां से, उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहां से, ठहरो जो मेरे घर में तो इसमें बुरा क्या है। इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीजें, बाहर से नजर आती है ये छोटी सी कुटिया, लटके हुए दरवाजों पे बारीक है पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया, मेहमानों के आरामों के हाजिर हैं बिछोने, हर शख्स को सामा ये मुयस्सर नहीं होता। मक्खी ने कहा खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद न रखना, इन नर्म बिछोनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। अब साहब मकड़े ने कहा, ये तो फंसती नहीं है। मकड़े ने कहा, दिल ने सुनी बात जो उसकी, फांसू में इसे किस तरह, ये कम बख्त है दाना, सो काम खुशामत से निकलते हैं जहां में, देखो जिसे दुनिया में खुशामत का है बंदा। ये सोच के मक्खी से कहा, मकड़े ने ये सोच के मक्खी से कहा, इसमें बड़ी भी अल्लाह ने बख्शा है आपको बड़ा रुतबा, होती है इसे आपकी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नजर आपको देखा, आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कनिया, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया, ये हुस्न ये पोशाक ये खूबी ये सफाई, फिर इस पे कयामत है कि उड़ते हुए गाना। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामत तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका, इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। ये बात कही उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछल कर उसे पकड़ा, भूखा था कहीं सोच से अब हाथ जुआई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। कैसी लगी आपको یعنی اس کو بڑا پھسلایا پھلکایا بٹ نہیں اس نے بات مانی. چلیے اب میں نے ٹاپ آف دا آور کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے, آپ لوگ کال بھی کر رہے ہیں مگر انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو ٹیک دا کال, مگر ایک کال لے لیتی ہوں. السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام, آپ خیریت ہے؟ ٹاپ آف دا آور لیجیے, میں ہولڈ کرتا ہوں.
آپ کا بہت شکریہ.
شکریہ نہیں, پہلے امپورٹنٹ بات ہے, بزنس پہلے بعد میں ساری باتیں, رات کی باتیں نیند خراب, دن کی باتیں کام خراب. میں صرف کام کے اوپر توجہ دیتا ہوں کیونکہ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں, لیس بالانسان الا بما سعى.
ہاں بالکل, لیس
بالانسان الا بما سعى.
بالکل, بہت شکریہ
جی, بہت شکریہ. آپ میں ہولڈ کر رہا ہوں, اس کے بعد
ڈینٹل کلینک ڈاکٹر فیاض اینڈ ایسوسیٹس, آپ کی پہلی چوائس, پیراڈونٹکس, آرتھوڈونٹکس, ڈینٹل امپلانٹ, کاسمیٹک ڈینٹسٹری اینڈ مچ مور. وارم اینڈ فرینڈلی ایٹموسفیئر جہاں آپ اپنی زبان میں اپنی تکلیف بیان کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ڈینٹل انشورنس ہے یا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اسکارگو میں ایک اور مسیساگا کی دو لوکیشن پر آپ کو سرو کرتے ہیں. اپوائنٹمنٹ کے لیے ابھی کال کیجیے 9052325678, مسز ساگا 416-757-9999.
ویلج ٹیسٹ پورے آنٹیریو کا سب سے بڑا حلال سپر ریسٹورینٹ ہے. کانٹینینٹل چائنیز باربیکیوز ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, کڑھائی آئٹمس ہیں اینڈ سویٹس اینڈ فروٹس میں بے انتہا ورائٹی ہے. بہترین فیسٹ انجوائے کیجیے ویلج ٹیسٹ پہ. آفٹر مسز سادا دے آر ان اوک ویل ایز ویل. ویلج ٹیسٹ 9052323663. نوبل فریش فوڈ, جی ہاں, سستی اور بہترین گروسری کے لیے نوبل فریش فوڈ. طاہر میاں سپر مارکیٹ والے انبیٹیبل ڈیلز, ریٹیل یا پھر ہول سیل. تالے 349 چار پاؤنڈز, ایکسٹرا لانگ باسمتی چاول 100% گارنٹی 899 10 پاؤنڈز. جونسا مینگو جوس آزمائش شرط ہے. تازہ سبزیاں, آٹا, چاول, دال, مسالہ جات اور ڈرائی فروٹس. نوبل فریش فوڈ, دو لوکیشن, 20 کلنگن ڈرائیو ان برامٹن. اس کے ساتھ آپ کو سیکنڈ لوکیشن ملے گی ایئرپورٹ اینڈ سینٹر روڈ کے انٹرسیکشن پہ. نوبل فریش فوڈ.
گھر بنوانا ہو یا پرانا گھر نیا کرنا ہو, ارم ہوم بلڈرز اینڈ رینوویٹرز آپ کے ساتھ ہیں. کسٹم ہوم بلڈز, ہوم ایڈیشن, کچن اور باتھ روم رینوویشن, بیسمنٹ رینوویشن, پینٹنگ, ٹائلز اور ہارڈ وڈ فلورنگز کے لیے ہر کام میں مہارت, معیار اور اعتماد. ابھی کال کیجیے 416-841-5825 یا وزٹ کیجیے ان کی ویب سائٹ aramrenovation.ca. ارم رینوویشن, خوابوں کی تعمیر اعتماد کے ساتھ.
لیسا کی یاد نہیں آئی تجھے جسی؟
لیسا کاسمیٹکس لائے ہیں اسپرنگ ویئر ہاؤس سیل خاص آپ کے لیے. پرفیوم, اسکن کیئر, میک اپ, ہیئر کیئر, ڈیزائنر سن گلاسز, چاکلیٹس اور بھی بہت کچھ, وتھ میگا سیونگز اپ ٹو 80% آف. ڈیلس آن آل یور فیوریٹ ورلڈ فیمس برانڈز جیسے ٹام فورڈ, ورساچے, ارمانی, ہزارو اینڈ مور. آپ کو آنا ہے 135 کامرس ویلی ڈرائیو, ایسٹ مارکم, ہائی وے 404 اور 407 کے بہت قریب. سیل چلے گی اپریل 18 سے مئی 10 تک, پرفیکٹ فار مدرس ڈے گفٹنگ. لیسا ویئر ہاؤس سیل, وزٹ لیسا کاسمیٹکس ڈاٹ کام.
پیٹرو کینیڈا پیش کر دے جوران ہیوی ڈیوٹی ڈیزل انجن آئل, ہن فل سروس سیونگ سٹال 10W30 سنتھیٹک $20 ڈسکاؤنٹ, $5W30 $40 ڈسکاؤنٹ. آفر لمیٹڈ ٹائم لئی 5W30 کوئک سٹارٹ اور آئل فلو ٹھنڈے موسم وچ جیتو 10W30 انجن دی کارگزاری نو بنائے رکھدا. کیو ٹی ایل دی تین لوکیشنز تے پوجو اور لاب چکو. ایگزٹ 268 کیمبرج, ایگزٹ 579 ناپنی, ایگزٹ 5 فورٹ ایئری. پیٹرو کینیڈا اور QTL, بلے بلے انوٹھا ساک.
چاندنی
بینکویٹ ہال,
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز, ساؤنڈ سسٹم, انوویشنز. چاندنی بینکویٹ ہال,
30 ایئرز آف ہاسپیٹلٹی ایکسپیرینس. کارپوریٹ ایونٹ, ایگزیبیشن, ایکسپو اور اینی سیلیبریشن.
انڈور اینڈ آؤٹ ڈور گولف کورس فیسلٹیز. چاندنی بینکویٹ ہال. فار اپوائنٹمنٹ کال ٹوڈے ایٹ 9054588888, 9054588888, اور وزٹ چاندنی وکٹوریا ڈاٹ سی اے. چاندنی,
میری پورے سال کی سیونگ $400 ہوئی ہے.
میری سیونگ $350
اور میری سیونگ سب سے زیادہ ہوئی ہے. میں نے سیو کیے ہیں $2000.
کیا چمتکار کیا, مجھے بھی گر سکھاؤ نا.
بھائی بات سادہ سی ہے, ہمارے پاس دو گاڑیاں اور ایک گھر ہے اور ان سب کی انشورنس ملا کر میں نے زبردست سیونگ کی ہے. آپ بھی اپنی گاڑی اور گھر کے انشورنس میں خوب سیونگ کر سکتے ہیں. 6472903773, 6472903773.
ट्रक ड्राइवर भाइयों, अब यूएस और कनाडा में अनलिमिटेड डाटा वीवो टेलीकम्युनिकेशंस के साथ फुल स्पीड नो रुकावट। सफर बिजनेस का हो या शौक का, वर्ल्ड वाइड ई सिम डाटा प्लान के साथ इंटरनेट हमेशा रेडी। ट्रैवल कर रहे हो इंडिया, पाकिस्तान या हज या उम्रे के लिए, वीवो टेली के साथ हमेशा रहो ऑनलाइन। दूर दराज इलाका कोई प्रॉब्लम नहीं, घर हो या केबिन, वीवो टेल की हाई स्पीड इंटरनेट चलती है दुनिया के किसी भी कोने में। विजिट करें vivotel.com या कॉल करें 416-243-9836 कनेक्शन आपका दुनिया के साथ।
ट्रक सर्विसिंग खेतर विच ओंटारियो दा मोहरीना क्विक ट्रक ल्यूब, तुसी एक ट्रक चलाने जा फ्लीट हैगी जे तो हाडा टाइम वैल्यू रखदा। अपॉइंटमेंट भी लोड नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, ट्रेन्ड टेक्नीशियंस राही बेस्ट हाई ग्रेड ऑयल्स फिल्टर्स, इंजन दी जान बदाउंदे। होर की चाहिदा, तीन लोकेशन तो तुहाडी सेवा करदे। QTL एग्जिट 268 हाईवे 401 कैम्ब्रिज, एग्जिट 579 हाईवे 401 नैपनी, एग्जिट 5 QEW फोर्ट एयरी। सर्विस और क्वालिटी विच सब तो प्रमुख ना, QTL 5196220660 जो आवे सो राजी जावे।
राजधानी कोई मांगे मीठा कोई कहे नमकीन, एक बात तो पक्की है
ये सब है इसके शौकीन।
ये है राजधानी राजधानी राजधानी
राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
ये है राजधानी राजधानी राजधानी
Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ 801 Bowie Drive West, Brampton, या कॉल करो 905-450-2828, 905-450-2828।
अपने प्यारों को पैसे भेजें लैम्प आई के साथ, अब आसानी और एतमाद के साथ, बेहतरीन रेट्स और मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ आज ही ट्रांसफर करें। लैम्प आई LEMFI, साइन अप करते वक्त रेफर कोड E10 का इस्तेमाल करें और अपनी पहली ट्रांजैक्शन पर 100 या उससे ज्यादा भेजने पर $20 कैश बैक हासिल करें। और बस यही नहीं, अपने दोस्तों और फैमिली को भी रेफर करें और हर रेफर पर आप दोनों पाएंगे $20-$20। तो आज ही विजिट करिए lampfi.com LEMFI.com।
जी साहब, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। मेरे साथ जनाब खलील जाफरी साहब हैं, आप लोग भी स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं अगर आपने कोई बात करनी है। 416-620-1778 खलील जाफरी साहब बात करेंगे, उसके बाद फेयर व्यू मॉल शूटिंग के सस्पेक्ट। मजे की बात है, दो चोर थे, एक चोरी कर रहा था, दूसरा चोर भी वहीं भी मौजूद, उसने गोली मार के उसको तो मार दिया। मतलब इसका भी रिकॉर्ड गड़बड़ है। हालांकि आप देख लीजिए, अगर आपने गलती की हुई है तो वो पुलिस के रिकॉर्ड में, या मैंने अगर कोई गलती की हुई है तो दैट इज इन पुलिस रिकॉर्ड। 407 विटवी में एक ईस्ट बाउंड लेन पे एक्सीडेंट हुआ है, आदमी की बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, हम उसके बारे में जिक्र करना चाहती हूं। डगफोर्ड साहब ने, जो हमारे प्रीमियर हैं ऑन्टेरियो के, उन्होंने जहाज खरीदा था, मगर इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने फौरी तौर पर जब उनकी तनकीद हुई तो ही सोल्ड इट। तो उन्होंने ये कहा है कि जितनी कीमत पे हमने जहाज खरीदा था उतनी कीमत पे ही हमने बेच दिया। ही सेज प्राइवेट जेट हैज बीन सोल्ड फॉर दी सेम प्राइस जिसके ऊपर हमने खरीदा था। ओ, अंडों में साल्मोनेला का पता वायरस होता है। एग प्रोडक्ट्स रिकॉल्ड इन ऑन्टेरियो एंड क्यूबेक ड्यू टू साल्मोनेला, इसीलिए कहते हैं अंडा कच्चा नहीं खाना चाहिए, उसमें साल्मोनेला वायरस हो सकता है। तो अब जो ऑन्टेरियो के और क्यूबेक के अंडे हैं, अब ये बात दुगरी दोरी होगी। ऑन्टेरियो और क्यूबेक तो अंडे नहीं देता, मगर यहां की मुर्गियों के जो अंडे हैं उनमें साल्मोनेला वायरस की वजह से उन्होंने क्या उनको रिकॉल कर लिया। मेरे साथ सैयद खलील अजहर साहब हैं। जी अजहर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं?
अल्लाह का बहुत शुक्र है। जी खलील भाई, आप अपनी इनपुट कीजिए।
जी मैं कल, दरअसल प्रोग्राम बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हुआ, मुझे से ताखीर हो गई, तो हमारे आमिर भाई उठाए थे, बिल्कुल खत्म हो गया था। तो उस वक्त में अल्लामा इकबाल की बरसी थी, तो उनका खुद अपना एक कलाम है मौत के ऊपर। अब क्योंकि उनकी बरसी थी तो ये कलाम पेश करने के लिए आया था। वैसे इंडिया में फोन करके मैं उनके लिए खत्म कुरान वगैरह भी साले सौर के लिए कराया हूं, तो जिस हिसाब से करवा तो हाफिज है वो हमेशा बोलते कि आपका क्या ताल्लुक है इकबाल से, कोई रिश्तेदारी नहीं कुछ नहीं। फिर आप उनको हमेशा हर साल ऐसा क्यों करते? मतलब यार तुम भी एक अजीब आदमी है यार, कभी शुक्रगुजारी की कोई बात करते किसी के कभी मुंह से? हमेशा नुक्ता चीनी। तुम ये बोलो मुझ जैसे कितने लोग करते? पूछा, बोले एक भी नहीं। तो मतलब फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं मेरे को कि मत करो बोल के? आप खुश होना चाहिए, आपको पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? बोला जी हाँ, काम अपना दिलो जान से करिए। तो मैं देखा कौम की नातरक्की की वजह भी आपा यही है कि नुक्ताचीनी बहुत करते। नहीं, आप देखिए अमल करो बोला अल्लाह ताला, अमल नहीं करते खाली। बहरहाल तो इकबाल फरमाते हैं अपने कलाम में मौत के बारे में, आपा मैं बड़े बड़े शोराओं को पढ़ा, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से मिलाया भी मुझे, बड़ी फैज की बात है, हर एक को ऐसे मौके भी नहीं मिलते, बड़े बड़े उलमाए दीन से भी अल्लाह मिला दिया, वैसे रहे जरिए। तो इकबाल फरमाते हैं कि बाग है, फिरदौस है, एक मंजिले आराम है। आपको मेरी आवाज?
बाग है, फिरदौस है, एक मंजिले आराम।
मुनखता हो गई लाइन, समझ?
नहीं नहीं,
बाग है, नहीं नहीं आवाज नहीं है ना, तो मैं ऐसा ज्यूम करा, बाग है फिरदौस है, एक मंजिले आराम है, या रुखे बेपरवा हुस्न अजल का नाम है, क्या जहन्नुम मासिया सोजी की एक तरकीब है, आग के शोलों में पिन्हा मकसद तादीब है, क्या आवाज रफ्तार के उस देश में परवाज है, मौत कहते हैं जिसे अहले जमी क्या राज है,
क्या बात?
जस्तुजू में है वहां भी रूह को आराम क्या, वहां भी इंसान है खतील जौक इस्तेखाम क्या, आ वो किश्वर भी तारीकी से क्या मामूर है, या मोहब्बत की तजल्ली से सरापा नूर है, तुम बता दो राज जो इस गुम्मदे गर्दा में है, मौत एक छुपता हुआ कांटा दिले इंसान में है।
मौत है एक चुपता हुआ कांटा
दिले इंसान में। कितनी बड़ी बात है बताइए मेरे को आप, ये खुद अपने बारे में कोई शख्स ऐसा बोलना, ये बहुत बड़े जिगर की बात है। आप लोग आजकल मैं देख रहा हूँ अपनी पुरानी चीजों से अपने यानी बिल्कुल ला इल्मी ला ताल्लुक हो गए हैं, एक किताब नहीं पकड़ते हाथ में। मैं किसी के बंदे के हाथ में नहीं देखा, इत्तेफाक से कल एक घर में जाना हुआ, कुछ छोटी मोटी दावत थी वहां, जिसके हाथ में देखो सेलफोन, यानी 7 साल से 70 साल के बुड्ढे के पास यही, सिवाय मेरे हाथ में नहीं था। तो लोग बोले आप सेलफोन नहीं रखते? मैंने कहा रखता हूँ, जिस तरह पुलिस वाला बंदूक रखता है उसी तरह रखता हूँ, लेकिन चलाता हरेक पे नहीं। बोला अरे ये कैसी बातें आप फलसफाना करते? बोला मैं खुद फलसफी आदमी हूँ, फलसफी हूँ, मुझे समझने के लिए जरा गहराई से देखिए, और ये सब आप लोग जो कर रहे हैं, कोई आपके पास भिजा रहा कोई गंदी चीज वो देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में आप कचरा डाल रहे हैं, आप वो डालिए जो आपके आबो अजदाद दिए। बोला ये चीजें होते तो बोले एक साहब नहीं नहीं वो सियासतदान के ऊपर बात है। मैं कौन सियासतदान? मेरे सामने कभी भी ट्रंप का इसका इसका जिक्र नहीं करना, मैं इनको सियासतदान तो बहुत बड़ी चीज है, ताजिर भी बहुत बड़ी चीज है, मैं इंसान भी नहीं समझता। बोला बोले ऐसा क्यों? मतलब इसलिए क्योंकि जो खून जाया करे वो कैसा इंसान होता? बोला आपको अफसोस होना चाहिए, वैसे अगर आप बनना चाहते सियासतदान तो मेरे पास नुस्खा है। बोला जी बड़े उम्र के रसीदा आदमी थे, 4-5 पूरे करीब आ गए, जी बताइए क्या है नुस्खा। मतलब अगर आप सियासतदान बनना चाहते हैं तो एक हकीमी नुस्खा है, और नुस्खा ये है कि इस नुस्खे पे सख्ती से अमल करिए, वो ये है कि चंद दिनों में आप अजीम सियासतदान बन जाएंगे। और नुस्खा कुछ इस तरह से है जनाब के कुछ अरसे में यानी तुख्मे खुदगर्जी 4 तोले, बर्गे खयानत, खमीरे तंग नजरी, शरबत खुशामत और तुख्मे तकबर लेकर इन आजा को हक तल्फी के तराजों में तोलिए, फिर जुल्म की हंडिया में डालकर हिरस के चूल्हे पे चढ़ा दीजिए, मुतवासिल आग देते रहिए, जब ये पक जाए तो नाशुकरी के चमचे से सुबह शाम 2-2 चमचे हलक में अपने डालिए, चंद दिनों में आप कामयाब सियासतदान बन जाएंगे। बोला
क्या बात
है, जरा सोचिए आप, तो पूरे भाग गए, एक भी नहीं था महफिल में,
सही
समझिए आप। ये बातें है, बड़ा तकलीफ होती, किधर जा रहा माशरा समझ में नहीं आ रहा, यानी कोई आपको कंट्रोल कर रहा जो आपको नजर ही नहीं आ रहा, ना आप उसके नाम से वाकिफ है, ना आप उसकी जगह से वाकिफ है, वो कहीं से बैठ के आपको कंट्रोल कर रहा है, कितनी अफसोस की बात है, नहीं है बताइए आप।
नहीं इसमें अफसोस, देखिए दुनिया की ये बदलती बिगड़ती हुई सूरत है, यानी जिसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं है, ये दुनिया की वो सूरत हाल है। मैंने कल परसों के प्रोग्राम में भी यही बात कही थी कि हम डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, इट टुक सो लॉन्ग टू प्लांट डोनाल्ड ट्रंप, और मैंने जब कवर किया था चार्ल्स कुशनर को तब बात की थी कि जो जैरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, ظاہر ہے یہ چارلز کشنر ویری اسمارٹ اینڈ انٹیلیجنٹ مین جو بنیادی طور پہ وکیل تھا نیو یارک میں, مگر اس نے کس طرح سے فراڈز کیے, کتنی کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس پوزیشن میں لے کے آنے میں, یہ وہ لابیسٹ لوگوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا جو کہ آج کی جو صورتحال ہے میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اٹ واز ناٹ ڈیولپڈ ان سکس منتھس اور ون ایئر, اٹ واز ڈیولپڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اور آج جیرڈ کشنر, یعنی کسی بھی انسان کو ایک پوزیشن ملنے کے لیے باقاعدہ اس کی جانچ پڑت کی جاتی ہے, جیسے ابھی جو فیڈ کے جو چیئرمین بننے ہیں جنہوں نے پاول کو ریپلیس کرنا ہے, اس کو اچھی طرح سے کل گرل کیا گیا بائی دا ڈیموکریٹس نے اس کو گرل کیا گیا, تو چارلز کشنر کی بھی گرلنگ ہوئی تھی, مگر انہوں نے آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, آج چاہے آپ ذکر کر لیں کہ چارلز کشنر کو اتنی کریمنل اس کے اوپر ایلیگیشنز کے باوجود ہی از امبیسڈر آف امیرکا ان فرانس, تو یہ چیزیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم لابنگ کرنے کے بعد کی جاتی ہیں. تو میرے اور آپ کے اس بات کو, اور آپ آئی نو یو آر اے بلیور, میرے اور آپ کے ماننے کی وجہ سے کہ میں اس کو پولیٹیشین نہ مانوں, میں ان کو امیرکا کا صدر نہ مانوں, بٹ حقیقت تو یہ ہے کہ ہی از دا پریزیڈنٹ آف امیرکا, اور حقیقت تو یہ بھی ہے, میرے پاس آج کی رپورٹ ہے جس کے بیچ میں کس کس شخص نے کتنا پیسہ بنایا اور ڈیٹس کے لحاظ سے اس کو کور کیا گیا ہے, کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیوز دی, نیچے انہوں نے اپنا وہ سٹاک دیا, لوگوں نے 8 بجے کے بعد اس سٹاک میں انویسٹ کیا, پیپل میڈ ملینز بلینز پروسیس کے بیچ میں بنائے ہیں. تو اگر میں اور آپ یہ لفظ کہیں, کہیں ہم ان کے لیے بلنگ کا, کہیں میڈ مین کا, سو اٹ ہیپنڈ اینڈ ہی از دی پریزیڈنٹ آف امیرکا ایٹ دا مومنٹ.
نہیں ٹھیک ہے, امریکہ کے پریسیڈنٹ ہے, پر مجھے یہ تو بتائیے مسلسل پھر آپ اپنی باتوں میں تبدیلی لاتے, آپ کی کہیں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, آپ کے پڑوسی آپ سے ناخوش, آپ کا جو ہے جتنا معاملہ ہے وہ ناخوش, کیا کسی پریسیڈنٹ کو کبھی امپیچمنٹ نہیں ہوا, کبھی کسی پریسیڈنٹ کا آپ کا خیال نہیں ہے کہ اقتدار سے اتار دیا گیا, آپ کو معلوم ہے دماغی توازن کسی کا خراب ہو آپ کی تلا کے لیے شریعت میں پاگل کے لیے نماز معاف ہے.
نہیں سر, آپ یہ آپ یہ بات کر رہے ہیں,
نہیں آپ محسوس کر رہے ہیں, آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ابھی سامنے نظر آ جائے گا نا, چند دن دیکھیے ابھی کون سی دلی کون سی دور ہے, ہنوز دلی دور از بولتے حضرت نظام الدین اولیاء کا,
6 مہینے کے بعد ہوتا ہے تو 6 مہینے تک تو جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا میرے بھائی.
کیش
پٹیل نے اپنا کام کر لیا, حضرت نے اپنا کام کر لیا, ٹائم بانڈی نے اپنا کام کر لیا,
آپا خطا کلام معاف, کورونا آنا تھا تو آ گیا, مگر جانے کے لیے بھی تو وقت لگے گا نا, آنے کے لیے نہیں لگانا, آپ کو ویکسین بنانی پڑے گی, ہر چیز کا اپائے ہے, ہر چیز کا حل ہے,
اللہ تعالیٰ
لوگ کر رہے ہوں گے اپنے کو کیا معلوم,
اللہ تعالیٰ بہتر کرے, اللہ
بالکل یہ بولے آپ پازیٹیو بات, اللہ تعالیٰ بہتر کرے, اور آپ کے اختیار میں ایک چیز دیا ہے وہ جس کا نام ہے دعا, وہ ضرور کرا کریے, آپ ضرور بولیے, کیونکہ اس نے یہ کہنا ہے, یہ ہمیشہ کہتا ہے فرشتوں سے اللہ کہ تم میں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, کچھ مانگتے نہیں ہم سے, اسی واقعے کے اوپر اقبال نے یہ شعر بولا تھا کہ تم میں حوروں کا کوئی طلبگار ہی نہیں, کوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں, تو کوہ طور تو ابھی بھی زمین پہ ہے, $1200 ٹکٹ دیجئے ریٹرن مل جاتا آپ کو یہاں سے, $50 ٹیکسی والا لیتا پورا گھما پھرا کے آپ کو واپس لا کے چھوڑ دیتا آپ کے اسٹور میں, پر مجھے یہ تو بتائیے کہ اوپر چڑھنے کے بعد اللہ موسیٰ سے کلام کرتے تھے پہاڑ سے نہیں, بس یہ بولنا چاہتا ہوں آپ نے اسی شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ شانوں پہ رہے یا کہ رہے نو کے سنا پر, جو غیر کے آگے نہ جھکے سر وہی اچھا, لشکر تو بہت آئے جنگ کے میدان میں, جو راہ خدا میں رہا لشکر وہی اچھا. السلام علیکم.
جو غیر کے آگے نہ جھکے سر وہی ہے اچھا, بہت شکریہ آپ کا جناب
سید خلیل اظہر
صاحب, آپ کا بہت
شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے, اللہ خوش رکھے,
آپ شامل ہوتے رہا کریں, وی ڈیفینیٹلی نیڈ یو. زرداری صاحب, حمزہ زرداری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جی زرداری صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دیکھیں تاریخی خلیل اظہر صاحب بہت اچھا بولتے ہیں اور ناپ توڑ کے بولتے ہیں, ان کی اردو بھی حیدرآبادی اسٹائل کی ہے تو اچھا لگتا ہے, ہماری تو سندھ کے اسٹائل کی اردو ہے, اور
اردو بھی بہت اچھی لگتی
ہے. نہیں اچھا, وہ دوسرا یہ دیکھیں, یہ بحری قزاق یہ تو شریف انسان تھے ہی نہیں, یہ جو انڈیجنس پیپلوں کو ختم کر کے ان کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے, ये कौन सी शराफत थी भाई। एक दिन मेरी बेटी रो पड़ी, बताओ क्या भाई क्या हुआ, और यूनिवर्सिटी से उठाया, कहते बाबा मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और अगर ये इंडिया आ रहे थे, अगर ये सारे इंडियन आ जाते यूरोपियन, तो आज पाकिस्तान में इंडिया में एक भी इंडिजिनस पीपल न होता, ये तो इधर आ गए। तो इन बहरी कज़ाकों से डाकुओं से आप इंसानियत की, ये इंसानियत की बात करेंगे अपने मुफाद के लिए, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे अपने मुफाद के लिए, आपके जो भी बात करेंगे ना अपने मुफाद में लपेट के करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। देखिए हाफ यूरोप वाज सोशलिस्ट कंट्री, जब जियाल हक ने कंधा देके सोवियत यूनियन को तोड़वाया तो वो हाफ यूरोप जो गोरा है वो सारा डेमोक्रेटाइज हो गया, लेकिन जो छह मुस्लिम स्टेट वहां आजाद हुए, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, पता नहीं क्या वो इस्तान वो जितने भी हैं, वो आज भी वहां पे डिक्टेटर बैठे हूं। और फिर मुस्लिम दुनिया की ये बहुत बड़ी बदबख्ती है कि वसायल है इस्लाम में, कहां है बादशाह का तसव्वुर। रसूल करीम ने एक स्टेट बनाया था, मदीने का स्टेट बनाया था, वहां पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था कि हम किस लाइफ से रहेंगे। तो अभी इन डाकुओं से ये उम्मीद रखना कि ये अच्छे होंगे और ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे ये, बस अब इनका वो हो, पहले ये हमें आते थे कॉलोनाइज करने, ड्रेन ड्रेन करते थे, मतलब वहां आके हमें कैदी बनाते थे, गुलाम बनाते थे, आज ड्रेन ड्रेन करके हम यहां पहुंचे हुए हैं। देखिए सारा अल्लाह बेहतर ही करेगा। थैंक यू
टू टेकिंग बता। बहुत शुक्रिया आपने और आपका तारीख का मुताला बहुत है। मैं बल्कि चाहूंगी कि अगले फिगर्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहरी कज़ाकों का आपने जिक्र किया और ईरान ने भी बिल्कुल यही लफ्ज कहा कि ये तो बिल्कुल वही है कि जैसे बहरी कज़ाक आके जगह जगह के बैठ जाते थे, आप किसी भी जहाज को या किसी भी ताजर को लूट लिया करते थे। आपने जिक्र किया कि इंडिया में अगर ये आ जाते तो क्या होता, मगर साहब इंडिया में भी जो लोग आए थे उन्होंने भी यही कुछ ही किया था, पुर्तगीज जो गए थे चाइना में उन्होंने भी यही कुछ किया था। मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करने लगी हूँ। ये साहब ये उस्ता पाटनिक जो एक हैं, रिसर्चर हैं, इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इनकी एक बुक शाया हुई है। इन्होंने कहा है कि बर्तानिया ने 1765 से लेकर 1938 के दरमियान हिंदुस्तान में, आप पता है ब्रिटिश लोग जब इंडिया गए थे, और आप इमेजिन कीजिएगा कि बन के ताजर गए थे, वहां पर बंद जगहों के ऊपर इन्होंने तकरीबन 1,00,000 की अंदर अंदर फौज तैयार कर ली थी। कुछ फौज में भर्ती कौन हुए थे, मैं और आप जैसे लोग ही भर्ती हुए थे ना, ठीक, मगर हमें ये नहीं पता था कि हम जिस जगह भर्ती हो रहे हैं उसका मकसद क्या होना है इन द लॉन्ग रन। तो 1965 से लेकर 1938 के दरमियान इंडिया ने तकरीबन 45 ट्रिलियन के मुताबिक वहां से इन्होंने चीजें निकाली थी। ये अंदाजा दो सदियों के दौरान टैक्स और तिजारत के जरिए होने वाले मौशी जो यानी ड्रेन कर दिया था इंडिया को, बड़ा ही अमीर जगह थी बड़े सगीर पाक व हिंद की जब हम बात करते हैं, 5% सालाना सूद के साथ इन पे सूद भी लगाया था। दौलत निकालने के तरीके ब्रिटिशर्स के क्या थे, यानी अगेन जैसा मैंने आपसे कहा 1765 से लेके 1938 के दरमियान तरीके थे कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से जमा किए गए टैक्स का इस्तेमाल करते हुए भारतीय एशिया जैसे कपड़ा चावल वो खरीदे, ये एशिया दर हकीकत बगैर अदायगी के इन्होंने हासिल की थी। बिकॉज हम आज भी पाकिस्तान में ही बात कर ले, मैं इंडिया की तो नहीं बात करती, मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, कोई मेन स्ट्रीम का यहां से गोरा चला जाए तो आप देखिएगा हम अपनी जान बिछाते हैं, दो तीन वजूहत हैं शायद मुझे बाहर के मुल्क में लेके जाने का भी मामला हो जाए। आज बल्कि मैं याद कर रही थी अगर डोनाल्ड ट्रंप चले गए तो पाकिस्तान एक जो प्रेसिडेंट गए थे अमेरिका के, उन्होंने आपको याद है एक ऊंट वाले को कितना हाईलाइट किया था। बहरहाल अब वो कहते हैं ये अशिया जो बगैर अदायगी की हासिल की जाती थी, जिसमें कपड़ा भी था, जिसमें चावल भी थे, जिसमें मसाला जात भी थे, ये अशिया बरतानिया में इस्तेमाल की जाती या फिर दूसरे मुल्कों को भी बरामद, ईस्ट इंडिया कंपनी इनको बरामद करती थी। इन बरामदात से बरतानिया अपनी जरूरी दरामदात के लिए अदायगी करता था, वो एक बार्टर सिस्टम था। 1858 के बाद वो कहते हैं ब्रिटिश राज कायम होने के बाद तरीकाकार बदल गया, मगर नतीजा फिर वही रहा कि देवर ड्रेनिंग इंडिया को, ड्रेन कर रहे थे बरसगीर पाक को, हिंद को। भारतीय पैदा कुनंदगान को रुपए में अदायगी की जाती थी जो उन्हीं से वसूल किए गए टैक्स से। आप उनसे टैक्स देते थे क्योंकि 58 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारोबारी जिंदगी को संभाल लिया था, आप उनसे टैक्स हासिल करते थे। जब आप ये चीजें लेते थे उसी टैक्स से ही, दे नेवर यूज टू ब्रिंग गोल्ड और मनी फ्रॉम ब्रिटेन, उसी से टैक्स लेते थे, लगान लेते थे, उसी से उनकी कीमत अदा करते थे। जबकि बरामदात के बदले सोना और चांदी, अब वो जो पैसा कमाते थे वो सोने और चांदी की सूरत में बरतानिया भेजी जाती थी। बरतानवी दौर से पहले भारत का जीडीपी 25% था, 25% बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर 1958 में। आ तो वो पहले से गए थे और बादशाहों को वो किन, वही मकड़ी और मक्खी की मैंने आपके साथ पोएम शेयर की थी, तो उनको तोहफे दिया करते थे, बस बादशाह इसी में खुश हो जाते थे, बड़े तोहफे आए हैं, बड़े कदर खरीदारे ने। बरतानिया ने जब टेक ओवर किया था 1958 में, इंडिया का जो जीडीपी था 25% था, मगर जब इन्होंने ये फॉल इंडिया इंडो पाकिस्तान को आजाद किया उस वक्त जीडीपी कितना था, 4% के करीब जीडीपी था। 45 ट्रिलियन डॉलर का तखमीना तालीमी हलकों में काफी मशहूर है, लेकिन कुछ माहिरीन इससे मुतनाज़े भी समझते हैं। 2 सदियों पर कंपाउंड सूद लगाने के तरीकाकार पर भी बहस की जाती है। और बरतानिया भारत पर 1.25 अरब डॉलर का कर्जा छोड़ के गया था जब इन्होंने रिलीज किया था इंडिया और पाकिस्तान को, जो कभी भी वापस उन्होंने नहीं किया कर्जा। इस मौशी पॉलिसियों के नतीजे में शदीद कहत पड़े। 19वीं और 20वीं सदी के अवैध में औसत उम्र में भी कमी आई, और अब हम अपने आप को बैश करते हैं, चाहे वो इंडिया है चाहे पाकिस्तान, कहते हैं जी साड़ी दरअसल खुराक एडी ताजा नहीं ना, इतने एवरेज उम्र हमारे मुल्क में कम है, इन मुल्कों में एवरेज उम्र जो है वो निस्बतन ज्यादा है। तो बहरहाल एक सूरत हाल थी जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस करना था। 4314 मेरे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो
हेलो
अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम
जी।
क्या आप अभी जो बात कर रही है कि ये इंडिया से इतना पैसा लूट के ले गए थे गोरे, आप ये तो सोचे कि जब ये आए थे ये यूरोपियन ब्रिटिशर, यहाँ पर था क्या? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी यहाँ पे, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी लेके आए, और उसके उनके जाने के बाद आप देखें कि इंडिया हो गया या पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान का तो कम ही फायदा हो रहा है, लेकिन इंडिया का ये हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी चाय इंडस्ट्री वो उनके पास है, उससे कितनी कमाई होती है। फिर वो जो जितनी भी चीजें लाए थे, टमाटर लाए थे, आलू लाए थे, और उसके बाद काजू लाए थे, उससे इंडिया को कितना फायदा हो रहा है, ठीक है ना। अब ये काउंट करना शुरू करें कि उनके वो जब से आए उसके बाद से लेके, और ये जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की जो ये कहा जाता है वो लूट के ले गए, ये एक्चुअली कन्वर्जन है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आज से 100 साल पहले एक जो जो एक तोला सोना था वो 10 रुपए का मिलता था, तो आज वो जो है लाख से ऊपर है, ठीक है ना। तो लोगों ने इसको इस हिसाब से कैलकुलेट करके ट्रिलियन में कन्वर्ट किया है। अब टेक्नोलॉजी में देखिए इंडिया के अंदर क्या जराये थे आने जाने के, उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर जो था रेलवे का जाल बिछा दिया, ठीक है, कहां से आया वो। आज इंडिया का जो है जो जितना भी निजाम है, नहरी निजाम है या पाकिस्तान का, वो भी सारा उनका डिवेलप किया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि साइंटिस्ट उन्होंने जनरेट किए अपने उनके जाने से पहले पहले, जो थे इंडिया में कई जो थे लोग उन्होंने साइंस के अंदर नोबेल प्राइज ले लिए थे, आर्ट्स के अंदर से नोबेल मुख्तलिफ उसके अंदर नोबेल प्राइज ले लिए थे, ये सब उनका इनाम है। आज जो इंडिया इनकी बड़ी जो बना हुआ है ग्लोबल पावर इकोनॉमिकल, वो सारा उन्हीं का जो दिया हुआ है, उन्हीं की जो एस्टेब्लिशमेंट करी हुई है। इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, टाटा जो था जब जंग अजीम हो रही थी तो टाटा के जो जो ये आयरन प्लांट थे उन्होंने बेतहाशा मनी जो थी बनाई थी। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कैलकुलेशन 50 इतने मिलियन ट्रिलियन डॉलर वो लूट के लेगा ये लेगा, लेकिन उसके बदले में उन्होंने बहुत कुछ दिया है, जिसका जो फैज है इंडिया आज तक ले रहा है और लेता रहेगा, और पाकिस्तान को भी उसको लेना चाहिए। कम से कम वो नहरी निजाम, कम से कम वो जो उन्होंने रेलवे का निजाम बनाया था, टैक्सेशन का बनाया था, उससे फायदा उठाना चाहिए। बस मेरा यही कहना है। ये आई थिंक शशि थरूर ने पहले ये किताब में किसी जगह पे लिखा था कि वो इंडिया को लूट के ले गए, कोई नहीं, वो बना के गए हैं। यहाँ पे तो उन्होंने तो अपनी उससे जो है कोशिशों से यहाँ पे जो बेवा औरतों को जो वो आग में जला दिया जाता था, उन्होंने तो उस कानून तक बना दिया कि आप मजीद ये काम नहीं कर सकते। तो जहां उनकी बहुत सी बुराइयां हैं, वहां उनकी बहुत ज्यादा अच्छाइयां भी हैं, जिनको देखने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम बिल्कुल ही हर वक्त उनके खिलाफ ही बोलते रहे। और आज दुनिया भर में जो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जो कि इनकी डोमिनियन स्टेट्स हैं यूके की, सारे इंडियन वहीं पे भाग भाग के जाते हैं जीने के लिए, कमाने के लिए।
सही,
बहुत शुक्रिया।
आप अपना नाम तो बता दीजिएगा, आपने बड़ी अच्छी बात की।
मेरा नाम वही है जो अभी कह के गए हैं, ये इकबाल।
अकबाल भाई, बहुत शुक्रिया चंदा भाई, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त कहा। मगर यस, जब ये आए थे तो यहाँ का जीडीपी जो था वो 25% के करीब था, जब ये गए हैं तो 4% पे था। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये इन्होंने लोगों को मुतारिफ जरूर कराया टेक्नोलॉजी से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, और जिसके ऊपर आइंदा की जो तामीर और तरक्की की बुनियाद भी रखी गई, यानी रेलवे और सड़कें, जदीद ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज को भी इन्होंने ही मुतारिफ कराया था। जो मैं बात आपसे कर रही थी, तो दे वर वेरी इंटेलिजेंट, यस, इन्होंने जीने का शऊर जरूर दिया था, मगर टेक्नोलॉजी भी जरूर दी थी। बट ऑन द अदर साइड ये क्या करते थे, लगान पे और उस टैक्सेस के बीच में जो कमाते थे उसी में से पेमेंट करते थे या बाकी कर्ज के ऊपर करते थे। आई टोटली एग्री कि उस रक, मगर जाहिर है साहब, वैल्यू की डीप मनी की डीवैल्यूएशन तो हुई है ना, अगर वो आज ट्रिलियंस में कंसिडर किया गया। मैं आपकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं कर रही, उन्होंने आज का शऊर बिल्कुल दिया, कोई शक नहीं। और अभी आपने जब पाकिस्तान का कहा कि पाकिस्तान को छोड़ दें, वो तो मैंने पाकिस्तान के लिए तो अल्लामा इकबाल की एक पोएम भी खासतौर पर पंजाब के लोगों के लिए, और उसके ऊपर लिखा हुआ है पंजाबी मुसलमान, जरबे कलीम ने उनकी ये पोएम है भी, यानी मजहब में बहुत ताजा पसंद इसकी तबीयत, कर ले कहीं मंजिल तो गुजरता है बहुत जल्द, तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, यानी तालीम तहकीक, अदरवाइज आप जाके देखिएगा एक्स के ऊपर, आप यकीन कीजिएगा पास वक्त गम होता है कि अल्लाह मेरी कौम के लोग जुबान क्या इस्तेमाल करते हैं। जी
बादशाह के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, चार पंजाबियों ने जो है आज तक जो है वो साइंस के अंदर नोबेल प्राइज लिए हैं, उसमें से जो दो या तीन जो थे वो तो मतलब हिंदू थे, और एक हमारे जो थे ये अल्लामा इकबाल हयात नहीं थे, इसलिए उनको नहीं ये पता चला होगा या नहीं मालूम था कि क्या होगा आइंदा। तो यही प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने वो थ्योरी सॉल्व की थी जो था आइंस्टाइन की बाकी रह गई थी, जो कि फोर्थ फोर्स के मुतालिक थी, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिकली भी चार आप गूगल करके देखें।
इकबाल भाई, आई टोटली एग्री विद यू, मगर डॉक्टर अब्दुल सलाम की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान मस्ट टेक प्राइड ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम। हम तो हर चीज को मजहब के खाने के बीच में रख के अपने लोगों को बिगाड़ के रख देते हैं, यानी हमने
उनकी भी एक ऐसी वो थी हरकत, जब पाकिस्तान एटॉमिक पावर बनना चाहता था वो उस वक्त छोड़ के चले गए। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा निजाम है कि वहीं से एक शख्स जो कि बिल्कुल भी इस फील्ड में नहीं था, डॉक्टर अब्दुल कदीर को अल्लाह ताला ने भेज दिया। तो जाहिर है कि जब कंपैरिजन किया जाएगा तो लोगों के अंदर एक वो मतलब है ना, वो गुस्सा या कह ले के वो ये फैलेगी ये बात कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। उस वक्त जो था पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने की जरूरत थी। अगर पाकिस्तानी दीन के अंदर आकर इस तरह के वो हरकत कर रहे हैं, उनको मतलब नापसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने भी सबसे पहले नापसंदगी के इजहार के तौर पे मुल्क छोड़ दिया था। उस वक्त पाकिस्तान का जो एटॉमिक सिस्टम था वो चल पड़ा था, यानी वो अंडर प्रोसेस था। तो ये जो है उनकी भी एक वो ऐसी हरकत थी कि जिसकी वजह से बाकी लोगों ने, और ये आप देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया कि एक शख्स जो कि बिल्कुल नामालूम था, कहीं हॉलैंड में बैठा था, अल्लाह ताला ने उठा के उसको دنیا کے آخر تک جو ہے یہ وہ عزت دے دی کہ اس نے جو تھا پاکستان کو ایٹمی صلاحیت بنایا. جبکہ یہی مقام جو تھا جو نوبل پرائز ہولڈر تھے جنہوں نے جو تھا آئنسٹائن کی تھیوری کو سالو کیا تھا, اس کو کوئی اعزاز نہیں ملا.
صحیح.
آپ یہ بھی تو سوچیں.
بہت شکریہ آپ کا پیغام بالکل گیا, اور میں کسی چیز پہ بھی آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہتا.
مجھے ان سے کوئی نفرت نہیں ہے, بڑی مطلب جو ہے ان کی
وی مسٹ ٹیک دا پرائڈ, مذہب اور ان چیزوں کو الگ رکھتے ہوئے مسٹ وی مسٹ ٹیک دا پرائڈ آف آر سائنٹسٹ. ہم نے تو
پاکستان
آئی اگری, مگر ہم نے تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کی, میرے پاس ان کی بک ہے, میرے بلکہ میں کل بھی اس بک کو پڑھ رہی تھی, میں خاص طور پہ اپنے مہنوئی کے گھر سے لے کے آئی, تو آئی فیلٹ سیڈ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے. شاید میں آج کے دور میں بہت ساری چیزوں کو ایئر بھی نہ کر سکوں. اٹ واز ہارٹ بریکنگ. آئی پرسنلی میٹ ہم, ڈاکٹر عبدالسلام کو میرے بھائی کے گھر میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. مجھے یاد ہے کہ ایک دن ان کی جب میرے بھائی کے تھرو جب کال پہ میری بات ہوئی تھی, مجھے کہتے تم میرے ساتھ فوٹو وہ کھینچ کے سیلفی بنا لو. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ تصویر نہیں بناؤں گی, کیونکہ مجھے میں آپ کی عزت کرتی ہوں, آپ میرے رول ماڈل ہیں, اور میں صرف تصویر نہیں بنانا چاہتی. تو مجھے کہتے ہیں نہیں, نارملی لوگ یہی کرتے ہیں نا. تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا, ڈاکٹر قدیر کے ساتھ ہم نے کیا کیا, کوئی اتنا اچھا ہم نے ان کے ساتھ بھی نہیں. انہوں نے تو آپ کو بتایا کہ اتنے اچھے انسٹیٹیوٹ بھی ہمیں دیے. اینی ویز بہت شکریہ آپ کا, بہت سارے کالرز آ رہے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو لینا چاہوں گی.
آپ نے مجھے اتنا موقع دیا بات کرنے.
اقبال بھائی آپ 100 دفعہ آپ جب بھی آئیے گا 100 بسم اللہ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ برٹشرز جو تھے انہوں نے انڈسٹری دی, انہوں نے سڑکیں تعمیر کی, جب انڈسٹری دی, جب انہوں نے نہری نظام بنایا تو انہوں نے یہاں پہ خوراک اگائی, خوراک کو بھی یہ سونے اور چاندی کی صورت میں اس سے جو پیسہ کماتے تھے وہ بھی یہ. آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ چلے گئے, لوگوں نے بعد میں جنگ آزادی لڑی, لوگوں چلے گئے, مگر وہ یہاں سے لے کر کے ہی گئے تھے. یس آپ علم آگے جب پھیلاتے ہیں تو کوئی آپ کے دماغ سے علم نہیں نکال سکتا. آج انڈیا نے اس کو یوٹیلائز کرنے کے بعد دنیا کی 5ویں طاقت بنا ہی ہوا ہے نا. قانونی عدالتی نظام بھی انہوں نے ہی دیا تھا, انگریزی زبان آف کورس ان دا لانگ رن دنیا میں. پاکستان میں تو آج ہم یہ بھی لڑائی کر رہے ہیں کہ انگریزی زبان میں پڑھایا جائے کہ سارا کا سارا, حالانکہ آپ کا ہر بڑا آدمی انگریزی اسکول کے بیچ میں پڑھتا ہے. اے لیول کے اسکول ہیں, 2 سٹینڈرڈز ہیں, غریب کے لیے عام ہے, امیر کے لیے آپ کے پاس عام دوسرا سسٹم ہے, حالانکہ انگریزی آپ کو پوری دنیا کے ساتھ کرتی ہے. میں تو اکثر اس کے پہ بھی اسٹینڈ لیتی ہوں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میڈیسن کی تعلیم جو ہے اس پہ لوگ مجھے بیش کرتے ہیں کہ نہیں ہر چیز کی ٹرم کی انگریزی ہے. جیسے دیر آر فیو ٹرمز, آپ نے گولڈ کا نام ہے اے یو, ٹھیک ہے, اس کا جب سمبل ہے اے یو بنا تو آئی ایم کے نام سے, تو آپ کو وہ ٹرمز انگریزی میں آنی چاہیے, مگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اردو میں آنی چاہیے. آپ اردو میں میڈیسن کی تعلیم, انجینئرنگ کی تعلیم بھی آپ اردو میں شروع کر دیں, حالانکہ انہوں نے برٹشرز نے انگریزی دی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ آج انڈیا اس کو یوز کر رہے ہیں نا. دنیا کی ہر بڑی انڈسٹریز میں انڈینز کی موجودگی ہے. تو یہ پھر ہم جب تنگ نظر ہو جاتے ہیں چیزوں میں, معاشرے کے بیچ میں, تو پھر وہ اسی طرح سے ریفلیکٹ ہوتا ہے. جو میں اکثر ایک لفظ اور بھی کہتی ہوں کہ قرآن پاک کے بیچ میں, مطلب ہم نے اپنے یہ حدیث قرآن پاک اور احادیث کے مطابق سنا کہ جیسی قومیں ہوتی ہیں ویسے ان کے لیڈرز ہوتے ہیں. ہم نے ہر جگہ کے اوپر اپنی وہ کی دنیا میں آگے بڑھنے کی, حالانکہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, رج کے ٹیلنٹ ہے. برٹشرز نے یونیورسٹیز دی تھی, ایجوکیشن کے سینٹرز دیے تھے, سیاسی نظریات ممبرز کی موجودگی انہوں نے دی تھی. اگلی کال کی طرف لے کے جاتی ہوں, ڈاک ٹیلی گراف کا سسٹم دیا تھا سیاسی نظریات کے لحاظ سے, فوجی تنظیم پیدا کی تھی, اور فوجی تنظیم کا سب سے بڑا فائدہ انہوں نے ہی لیا تھا. زیادہ تر جو انڈینز اس میں ان کی فوجوں کے بیچ میں حاضر ہوئے تھے, تو کیا ان سے کیا رول پلے کیا, آٹومنز کو توڑا تھا. بہرحال بہت لمبی چیز ہے, مگر بس وہی بات ہے, آج بھی ہمارے درمیان یہی تفرقات موجود ہیں, یہ جانے نہیں ہیں کہیں بھی. جی السلام علیکم. جی میرے پاس کسی کا فون نمبر نہیں آ رہا اس لیے میں آپ کا نمبر نہیں اناؤنس کر سکتی. لائن نمبر 5, السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام عرفا.
جناب
میں کہتی ہوں کہ انڈیا بہت اچھا ہے.
صحیح.
آپ دیکھیں کہ ان کی ساری دنیا میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا ہے.
صحیح.
سبزی, دال, मतलब हर चीज देखो खाते सीधे खाते कम है बजाते ज्यादा है और पढ़ाई ज्यादा करते हैं।
सही विश्वभाई जी। एक और चीज का आप जरा कीजिएगा अगेन। मैं आज एक मेरी एक इंडियन से मुलाकात हुई बॉबी गिल, मैं एडवर्टाइज भी करती हूँ उनका, उन्होंने मेरा एक काम किया था और जैसी मेरी तबीयत है, हालांकि मैंने उनको जो पहली पेमेंट की मैंने वो भी लिख ली, दूसरी पेमेंट की वो भी लिख ली, तीसरी पेमेंट की मैंने वो भी लिख ली, आज मैंने उनको फाइनल पेमेंट करनी थी। आई एम सो सॉरी आई कुड नॉट रिसीव हिज कॉल यस्टरडे, जब मैंने रिसीव की तो ही वॉज गॉन फार अवे। तो मेरा ख्याल था कि $3,500 उनका मैंने बकाया देना है, मैंने इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए, $3,500 उनके लिए रखा। अब 3,500 मैंने गिन के टेबल के ऊपर रखा हुआ, तो मुझे कहते भाजी हाँ आपने मुझे एक काम कहा था, बिकॉज आई एम सेलिंग माय होम, तो कहते मैं वो मुकम्मल कर लूं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया कि आपको याद है, बॉबी गिल इनका नाम है। तो ही केम और वो बंदे को लेके आए थे, हालांकि आज उसको मैं पैसे पूरे दे रही थी, तो वो ना भी करता तो क्या फर्क पड़ता था, ये उन्होंने मुझे एक थोड़ा सा फेवर दिया। मैंने कहा बॉबी प्लीज लुक एट द, आप गिन लीजिएगा। तो मैंने एक हजार के तीन पॉइंट्स बनाए थे, 500 का एक, तो 3,000 तक जमा करके उस बंदे के आगे 3,500 पड़ा हुआ था। मुझे कहने लगा कि नहीं बाजी तुसी मैंने पिछली बारी 3,500 देता सी, तुसी हुण मैंने सिर्फ 3,000 बाकी देना। आप यकीन कीजिएगा कि वो आदमी, हालांकि वो सिख है,
कितना इसका स्वाद है उनको,
आप स्वाद को छोड़ दें, मैंने आपसे कहा कि आपकी ईमानदारी, ईमानदारी एक इंसान
बहुत है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, खाते कम है बजाते बहुत है, मतलब ये खाते में का खाना ये नहीं है, पढ़ते बड़े हैं।
बहुत शुक्रिया विश्वभा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू।
जी चौधरी साहब, हूं मैं की करती, गलती कर देती?
नहीं नहीं आपने कोई गलती नहीं की, शुक्रिया मेरी कॉल लेने का। मैं वो खातून कह रही थी ना इंडिया, देखें दूर के डोर सुनाने, वहां जाके देखें कि कितनी गुर्बत है और क्या उनके पास बुनियादी सहूलतें भी नहीं है और इंसान को इंसान भी नहीं समझा जाता। पाकिस्तान में ठीक है कभी कभी वो आ जाती है आमरियत, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में लोग जो है बहुत आजादी से रह रहे हैं। अपना मैं आपके सिटी स्केप के सामने बैठा हूं, अपना वो जो है ना शुक्र,
बहुत प्यारी आपने बात कही कि नहीं हम बात चल जब एक सेकंड मेरे साथ रहेगा, चली बात कहीं और थी, हम कहीं और लेके चले गए। यस बात यहां से चली थी कि मैं पाकिस्तान के हवाले से जो एक बात, मेरा मुल्क बेहतरीन है, मैंने आपसे कहा कि वहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कतन कोई कमी नहीं है, मगर चंद लोग एतराज बराए एतराज की अंग्रेजी जो है वो बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। ओ भाई आपकी अदालतों के फैसले अंग्रेजी में होते हैं, आपका हर बड़ा आदमी अंग्रेजी में बात करना फख्र महसूस करता है, बड़े आराम से कहते हैं जी हमें उर्दू पंजाबी तो आती कोई नहीं है। ठीक, तो ये तो हमारे अशखासी प्रॉब्लम्स है ना, शख्सी प्रॉब्लम है, शख्सी प्रॉब्लम्स है। वेयर एज अगर हम इसको देखें कि एज ए मुल्क यस बेहतरीन है, मगर हम जहां पे नफरत का इजहार करते हैं हम पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को नहीं देखते। इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, सिवाय पाकिस्तानी होंगे, वो एक अलग टॉपिक है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट एट द मोमेंट, मगर पाकिस्तान की अपनी देखिए, आप इमेजिन कीजिएगा कितने मुश्किल वक्त गुजरे और उसमें भी पता नहीं अल्लाह ताला कहां से बचा के लेके चलता चला जा रहा है इस मुल्क को। क्या कमाल का मुल्क है, क्या कमाल का मुल्क। मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, आई एम रेडी हियर।
नहीं नहीं आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा, देखें वो एक खराब जो है ना, यह सदका पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में रहता है दुनिया में जो सबसे ज्यादा देता है, लोग दिल के खुले हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो हर वक्त वहम या शक रखेंगे। आप किसी की मदद करें, किसी को फ्री में चीज दे दें, वो थोड़ा ऊपर आगे जाके बोलेगा इसमें भी कुछ चक्कर होगा।
बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। पता नहीं अब अच्छा इसका जवाब चौधरी साहब मेरे दिमाग में ये है कि जैसा इंसान खुद होता है ना उसको सारी दुनिया वैसी नजर आती है। जो इंसान बुरा कर रहा होता है ना, आप यकीन करें या फ्रॉड कर रहा हो तो सारी दुनिया फ्रॉडिया नजर आ रही होती है। और जेड़ा शरीफ आदमी हो, ये लोगों ने वो एक औरत ने ना मिल्टन चो बेचारी इन्ने पैसे गवा बैठी, वो कहनी मैं सोच ही नहीं सकती वो झूठ बोल सकता बंदा। ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਬੈਠੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਸਕੇਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਜੇ।
ਜੀ ਜੀ,
ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ,
ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਮੁਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲਸ ਤੇ ਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਜ਼ ਅ ਹੈਪੀ ਮੈਨ। ਇਜਾਜ਼ ਲੋਧੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।
ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।
ਵਾਲੇਕੁਮ
ਸਲਾਮ। ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਮੁਝੇ ਤੀਨ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨੇ ਪੜੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਬ ਨੀਂਦ ਕਾ ਮੂਡ ਹੋਤਾ ਥਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਲੈਕਚਰ ਰੂਮ ਮੇ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਥਾ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਤਾ ਥਾ, ਦਬਾ ਕੇ ਸੋਤਾ ਥਾ।
ਅੱਛਾ,
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਾੜੀ ਚਲਾਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਲੋਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੀ ਕਿ ਗਾੜੀ ਚਲਾਤੇ ਹੋਏ ਨੀਂਦ ਆਏ।
ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਬ ਤੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਨਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੋ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਾਮ ਕੀਏ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਰਖਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਥੀ।
ਯਾ,
ਤੋਰਖਮ ਕੇ ਆਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਆਗੇ। ਉਨਕੀ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਰੇਲਵੇ ਕਾ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ ਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੀਨੀਅਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕੇ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਾ ਥਾ ਨਾ, ਉਸਕੀ ਜੋ ਚੌੜਾਈ ਥੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੇ ਉਸਸੇ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਕਮ ਰੱਖੀ ਥੀ।
ਅੱਛਾ,
ਯੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੌਸ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਕੋ ਬੜਾ ਮਸਤੇ ਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇ ਕਿ ਯੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੋ ਇਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਥੇ, ਇਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਾ ਵਹਾਂ ਸੇ ਰਸ਼ੀਆ ਕਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਹਮ ਪੇ, ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਜੋ ਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਸਦ ਕਾ ਜੋ ਹੋਗਾ ਥਾ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਕੇ ਥੀ, ਉਸਮੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਟੈਂਕ ਕੇ ਟੈਂਕ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਥੇ,
ਉਨਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੇ ਟ੍ਰੈਕ ਸੇ ਕਮ ਰੱਖਾ ਥਾ,
ਕਮ ਰੱਖਾ ਕੇ ਅਗਰ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਗੇ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਕ ਲਾਈਨ ਬਿਛਾ ਵੀ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉਸਕੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਜੋ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉਸੇ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਸੇ ਕਹੀਂ ਸੇ ਵੀ ਆਏ ਤੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਾਲੀਮ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਏਚੀਸਨ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਕੇ ਜੋ ਹੈ ਲੇਡੀ ਵਿਲਿੰਗਟਨ ਹਾਸਪਿਟਲ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਭੀ ਉਨ੍ਹੀਂ ਲੋਕੋ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਅਭੀ ਤੱਕ ਉਹ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ, ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਥੀ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਮ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ ਗੌਰਵ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਲੋ ਕਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਯੇ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾਨੀ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਥੀ ਆਪਨੇ ਯੇ ਕਹਾ ਕਿ ਵੋ ਲੇ ਗਏ ਲੂਟ ਕੇ ਲੇ ਗਏ, ਵੋ ਹਮਾਰੀ ਬਹਿਨ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਦੇਖੇ ਵੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾ ਵੋ ਹੈ ਵੋ ਖਾਤੇ ਹੈ ਬਚਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਲਗਾਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਨਸੇ ਯੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਾ, ਖਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਲਗਾਤਾ ਵੀ ਤੋ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ
ਇਤਨਾ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲੰਬਾ ਲੈਕਚਰ
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਹੈਪੀ ਮੈਨ, ਯੂਰ ਵਾਇਸ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਅ ਹਿਊਜ ਡਿਫਰੈਂਸ
ਹੈ।
ਹਾਂ ਸੱਚੀ,
ਸਟਿਕਰ ਭੇਜੂਗਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਸਟਿਕਰ ਭੇਜੂ।
ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਯਹੀਂ ਪੇ ਆਪਕੋ ਸਾਥ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਫਲੱਡਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਐਸ ਆਈਸ ਸਲੈਮਸ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਹੋਮਸ ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਾਰਾ ਆਪ ਸਮਝ ਲੀਜੀਏ ਵਿੰਡਜ਼ਰ, ਔਰ ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਮੇਂ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਹਮ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਇਸ ਖਬਰ ਕੋ ਕਵਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਯੇ ਵੈਦਰ ਕੀ ਬੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1990 ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਰੀ ਖਲੀਲ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਯਦ ਖਲੀਲ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰ ਆਪ ਕਿਆ ਫਰਮਾਏਂਗੇ?
ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਪਟਰੀਆਂ ਡਾਲੇ ਹੈਂ ਤੋ ਯੇ ਆਪਣੀ ਮਫਾਦ ਕੇ ਲਿਏ ਡਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਹਾਂ ਸੇ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ੇ ਯੇ ਬੰਬਈ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਥੇ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਗੋਦੀ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਤਾ ਥਾ। ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੀ, ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾਏ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਇਤਨੇ ਖੈਰ ਖਾਹ ਥੇ ਯੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਯੇ ਖੈਦ ਕਿਉਂ ਪੜਤਾ ਥਾ ਉਨਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ? ਗਾਓ ਦਰਾਸ ਮੇਂ ਲੋਗੋ ਭੂਖੇ ਮਰ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਪਤਾ ਚਲਾ ਜੀ ਆਪਕਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਯੇ ਲਗਾਨ ਕਾ ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਨਿਕਾਲਾ, ਯੇ ਕੌਣ ਲੇਤੇ ਪੈਸੇ, ਯੇ ਸਾਰੇ ਯੇ ਫਿਲਮੋ ਮੇਂ ਵੀ ਜੋ ਲਗਾਨ ਮੇਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਕਾ ਬਤਾਇਆ, ਕਈ ਭਾਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਤੇ ਥੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ 75 ਆਪਾ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ 95 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 95 ਰੁਪਏ ਆਪਸੇ ਵਾਪਸ ਲੇ ਲੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਸਬਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਆਪਾ ਕੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਆ, लेकिन लोग बोलेंगे यार वो 95 रुपए जो तुम वापस ले लिए, अरे वो तो ट्रांसपोर्टेशन के है, दूसरे और चीजें हैं, पेट्रोल है, ग्रोसरी है, सारी चीजें हैं ना, तो उन्होंने मुझे खुद से दिया जबकि आपने नहीं दिया, मैं जबरदस्ती लिया आपसे। मेरा ये कहना है, मेरे को ब्रिटिशर से कोई नफरत नहीं है, मैं खुद जो है रोमन कैथोलिक स्कूल में पढ़ा हूं सेंट पैट्रिक में। आप एक बात देखिए, जिस मुल्क में भी आप जाते, कब्जा करते या कुछ भी करते, आप वहां रहने के बावजूद तमाम उनकी तमाम चीजें देखते। अच्छा ये बात बताइए, क्या ये बर्तानिया का दालावा ये बीज नहीं है कि डिवाइड एंड रूल? पूरी दुनिया मानती इस बात को, सब बोलते, लेक्चर में सुना मैं, हमारे प्रोफेसर से सुना, मेरे जितने मुझे उर्दू पढ़ाने वाले, पांडुरंगा रेड्डी नाम था, हिंदू, लेकिन ऐसी उर्दू बोलते थे कि शर्म आती थी हमारे को उनसे बात करते हुए उर्दू में। तो ये कहने का मकसद ये है कि तमाम चीजें ऐसा नहीं है। अब आप पाकिस्तान की अगर बात बोलेंगे, हाँ ये बात मैं मानता हूं पाकिस्तान की, कि तालीमी मामला जो था उसमें उन्होंने कोताही की, उन्होंने ये बात गलत करी कि भाई वो अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए। नहीं, ये बातें नहीं करना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए मुसलमान मुल्क होने के बावजूद कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सेकंड खलीफा थे, वो चार जबाने बोलते थे उस जमाने में। तो मेरा ये बोलना है पाकिस्तान के हुक्मरानों से कि चार जबान कैसा बोलते थे, कौन से थे वो चार जबाने? फारसी बोलते थे क्योंकि सरकार के जमाने में दो वर्ल्ड में सुपर पावर थे, आज भी वही सिलसिला जारी है, आज भी दो सुपर पावर, एक अमरीका है एक रशिया है, अगर नहीं तो जाके लड़ लो बतारों में। तो मेरा ये बोलना है फारसी जानते थे, ताजिर लोग आते थे ग्रीक से, ग्रीकियन जबान जानते थे, ये स्पेन की वगैरह इस पे स्पेनिया के जरिए आते थे, नहीं तो फिर ये स्पेन कैसा फतेह हुआ, जवाब दीजिए। और फिर आप रोमन भी बात करते थे, और दुनिया में ये बात तयशुदा है, आप जाके किसी भी जंग के अखबार में या रहनुमाए दक्कन में या सियासत में दक्कन क्रॉनिकल में किसी भी साइट पेपर जाके ये पता कर लीजिए कि वर्ल्ड में सबसे पहले स्पोर्ट्स बिलिटी नापा किसने ईजाद किया, हु इन्वेंटेड, तो नाम लिखा हुआ आएगा सेकेंड खलीफा ऑफ इस्लाम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये क्या करते थे, जब पहलवानों की कुश्ती होती तो जाके पूछते थे आपका नाम क्या है, मैं आगा फरीद हूं, कहां से आया, ईरान से, ओके ईरान, आपका नाम क्या है, डोलोसस,
मुख्तसर रखते हुए क्योंकि इतनी कॉल्स हैं, मैं लोग बाद में
नहीं, कोई बात नहीं, आप
बड़ी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, मैं काटना नहीं चाहती, मगर
नॉलेज नहीं आप प्रोग्राम कर लीजिए।
मुझे इतना बोलना है
कि बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों के गले काट के उन्होंने तसले में पेश किया कि ये लो बोल के, और इनको जिंदगी में आंखों में सिलाई लगाते थे ताकि ये अंधे हो जाए। और इससे बड़ा सबूत क्या दे सकता हूं, जो अभी भी गूगल पे है, कि बहादुर शाह जफर की खबर, जो हिंदुस्तान के आखिरी ताजदार थे, वो उनकी रंगून बर्मा में है। मुझे बताइए, आप यहां बैठे हुए, आपकी पूरी जायदाद मान लीजिए किसी और मुल्क में है, तो मैं ये पूछूंगा नहीं आपसे कि ये क्यों करें आप ऐसा, तो इससे मालूम हुआ कि आप वहां रहना ही नहीं चाहते थे। तो भाई ये बातें हैं, मैं क्या बोलूं, इसमें टाइम बिल्कुल कम है, इल्म की बात है, मुझे बहरहाल तकलीफ होती, इतना ही मैं बोल सकता हूं खाली, जितना लूटना था वो लोग लूटे, पटरियां सारे बनाए, सारा काम माल बाहर ले जाने के लिए किए, हमारे पास कैद भी पड़ा, और ये लोग डिवाइड करते थे हमेशा, राजस्थान को पंजाब से लड़ाए। मुझे बताइए, ये जो दलियाना वाला बाग है, जलियाना वाला जो कुएं में मार के गिराए औरतों नियतते बच्चों को, तो ये कोई बहुत बड़े पहलवानी की बात है, ये क्या बातें हैं।
जलियां वाला बाग का अगर आप वाकया सुने तो मतलब सच्ची बात है, वही बाज इंडियंस ने उसके ऊपर स्टैंड भी लिया और उन्होंने अपनी जो फांसी पे चढ़े,
बर्तानिया जुल्म कराना, बर्तानिया जुल्म कराना, जो भी झंडा निकालते थे आप उसको फांसी देते थे। सबसे ज्यादा मुझे बताइए, इंडिया में जो इंडिया गेट है दिल्ली में बना हुआ है, उसमें आपको 6,900 लोगों के शहीदों के नाम मिलेंगे, जिसमें 4,900 मुसलमान है। अब क्या फरमाते हैं आप?
बहुत शुक्रिया, आपको पता ही है कि
भाई जो बात करे तो प्लीज आप, मैं बहरहाल इस सिलसिले में नहीं करता, क्योंकि मैं बात करे तो मैं बोलता हूँ जो सच है वो बयान करो।
देखिए,
और आखिरी में आप एक चीज और बोल देना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि ये इमेरेट्स एयरलाइंस जितनी भी पाकिस्तान इनको डेवलप करा, यूएई को पूरा डेवलप करने में पाकिस्तान का हाथ है, इनके कर्नलों को मिलिट्री ट्रेनिंग में, हत्या का यहां से आपके सुनने वाले कई लोग गए होंगे ईके की फ्लाइट लेके, इमेरेट्स एयरलाइंस का शॉर्ट फॉर्म ईके है, तो ईके का मतलब सुन लीजिए, पहली फ्लाइट जो ले गए थे ये इरशाद नाम का बंदा पाकिस्तानी पायलट ले गया था, और इस वक्त इसका नाम ईके है, ई से इमेरेट्स, के से कराची।
बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल
सीधा बात करता हूँ, मैं इलावजा नहीं, मैं चेचा मामा से नहीं, ये मेरा रिसर्च है, और मैं खुद दुबई में 10 साल रहा हूँ, 10 साल बहुत होते किसी मुल्क में।
बहुत शुक्रिया
आपके पास टाइम नहीं है, थैंक यू सो मच।
नहीं नहीं टाइम अनफॉर्चुनेटली टाइम की बात नहीं मेरे चंदा भाई, आप प्लीज उसमें ये कि सारी की सारी कॉल्स आ रही हैं और आपकी नॉलेज मैं तो हमेशा प्रेफरेंस दी आपकी, आई मेरे लिए आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें कदम कोई शक नहीं, रेस्पॉन्सेज को भी कवर करना है, आप लोगों की बातचीत ही है और उसमें मैं और आप जबरदस्ती डंडा मार के किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। एक स्क्रिप्ट है उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एक हर इंसान का अपना उसको अंडरस्टैंड करने का एक लेवल होता है। तो बहरा दैट्स ऑल व्हाट इट इज। शुक्रिया करना चाहती हूँ केपीएन और तंदूरी ग्रिल का, ये ओशवा में है, ओशवा में, और शेख रशीद साहब इसको चला रहे हैं।